श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी प्रभु की दया से कुशल हैं। प्रिय मित्र, आज के इस बाइबल अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। विशेषकर मैं अपने उन नए श्रोताओं का स्वागत करता हूँ। विशेषकर मैं अपने उन नए श्रोता मित्रों को बता दूं कि हम इन दिनों नए नियम के लुका रचित सुसमाचार से अपना अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सुसमाचार का उद्देश्य, जिब्राइल स्वर्गदूत का जकर्याह पर प्रकट होना और यूहन्ना के जन्म की घोषणा, और तब जिब्राइल स्वर्गदूत का मरियम पर प्रकट होना और यीशु का कुंवारी से जन्म की घोषणा के विषय में देखा था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मरियम का इलिशिबा से मिलना, यूहन्ना का जन्म और तब अध्याय दो की पृष्ठभूमि को देखेंगे। आइए हम लुका रचित सुसमाचार के एक अध्याय उसके 36 और 37 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, और देख, और तेरी कुटुम्बनी इलिशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। प्रिय मित्र, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का जन्म भी एक चमत्कार है, परंतु यह एक कुंवारी से जन्म नहीं है। स्वर्गदूत का कहना था कि परमेश्वर के साथ कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है और इन दिनों में हम सबों को इसे थामे रहने की आवश्यकता है। जो भी हो, मैं इस पर जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस वक्तव्य को लिया और इसको तोड़ मरोड़ कर इसके अर्थ को नाश कर दिया है। जब उसने किसी बात को करने का निश्चय कर लिया है तो परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। परंतु परमेश्वर उन असंभव बातों को नहीं कर सकते हैं जिसे हमने उसे करने के लिए कहा है। बहुत से लोग इस पद को अपने स्वार्थ या स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं। परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु एक महान विचार है जो आपके लिए और मेरे लिए असंभव है। जब एक मनुष्य कहता है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ कार्य जिसे पूरा करने के लिए वह असमर्थ होता है, तो वह कहता है कि परमेश्वर ने उसे करने के लिए दिया था, तो यह अविश्वासियों के लिए परमेश्वर का उपहास करने का कारण बनता है। जो कुछ भी परमेश्वर करने का निर्णय लेते हैं तो वह उसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि विश्वासी जो कुछ चाहेंगे वह उसे करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो उसकी योजना में शामिल नहीं है। आइए हम सब कुछ को सही संदर्भ में रखें, इससे पहले कि हम बहुत सी बातें करें जो यीशु मसीह के कार्यों की सहायता करने के बदले में उसे चोट और हानि पहुंचाए। हम लुका रचित सुसमाचार एक अध्याय के 38 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह पद परमेश्वर की इच्छा के प्रति मरियम के समर्पण को प्रकट करता है। उसने स्वर्गदूत से कहा, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसी क्षण एक बादल उसके जीवन के ऊपर छा गया और वह बादल तब तक बना रहा जब तक कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित नहीं हुए। मित्र, यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात को प्रमाणित करता है कि वह कुंवारी से जन्मा था। यह प्रश्न उस समय भी पूछा जाता था। मित्र, आप कुंवारी से जन्म का इनकार करके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, या कुंवारी से जन्म पर विश्वास करके पुनरुत्थान का इनकार नहीं कर सकते हैं। कुंवारी से जन्म और पुनरुत्थान दोनों साथ साथ चलते हैं, चाहे वे दोनों स्थिर रहें या फिर गिर जाएं। अब हम देखेंगे मरियम का इलिशिबा से मिलना। कुछ समय के पश्चात मरियम ने निर्णय लिया कि वह इलिशिबा से मिलेगी, जो यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में रहती थी। हम लुका एक अध्याय के 39 से 41 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर को गई और जकर्याह के घर में जाकर इलिशिबा को नमस्कार किया। ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। प्रिय मित्र, जिस विषय पर हम यहाँ बात कर रहे हैं यह एक चमत्कार है और इसके लिए एक प्राकृतिक या स्वाभाविक विवरण देने की कोशिश करने की कोता नहीं है। या तो आप इन पदों में घटित बातों पर विश्वास करें या आप ना करें। मैं आज के लोगों के लिए काफी चिंता करता हूँ, विशेषकर उन वक्ताओं के लिए जो बाइबल में के चमत्कारों को स्पष्ट करने के द्वारा बुद्धिमान बनने या दिखने की कोशिश करते हैं। मित्र, आप बाइबल के चमत्कारों पर या तो विश्वास करें या ना करें, लेकिन जो बातें इन पदों में घटित हुई है वह एक चमत्कार थी। यह स्त्री पवित्र आत्मा से भर गई और बालक उसके गर्भ में उछला। अब हम लुका 1:42 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। हमें लुका रचित सुसमाचार में पहला गीत दिया गया है और यह बहुत प्यारा है। डॉक्टर लुका एक कवि भी थे जो हमें क्रिसमस के सभी गाने देते हैं। यह सबसे पहला गीत है जो इलिशिबा से आया है। हम लुका 1:43-45 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, और देख ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। पवित्र शास्त्र में इलिशिबा के बारे में हमें बहुत थोड़ी जानकारी दी गई है। वह नए नियम की पहली गीत गाने वाली है, और जब आपके पास इस प्रकार की गायिका है तो आप उसे नजरअंदाज ना करें। वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की थी। उसे विश्वास था, जबकि उसके पति जकर्या को नहीं था, जो अपने अविश्वास के कारण ही गूंगेपन से प्रभावित अर्थात ग्रसित हुआ, परंतु इलिशिबा नहीं हुई। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और अब वह मरियम को उत्साहित करती है। मित्रों, मरियम एक जवान स्त्री और इलिशिबा एक बूढ़ी स्त्री है। इलिशिबा कई वर्षों से परमेश्वर के साथ चल रही है और वह उसे सांत्वना देती है कि जो बातें उस पर प्रकट हुई है वे सब क्रियान्वित होंगी। मैं दूसरों के साथ साथ इलिशिबा को भी थोड़ा सम्मान देना चाहता हूँ, पर उसे देवतुल्य नहीं बनाना चाहिए। वह मात्र एक स्त्री थी, जिस प्रकार मरियम भी एक स्त्री ही थी, और मरियम को उत्साह की आवश्यकता थी जिसे इलिशिबा दे सकती थी। लुका रचित सुसमाचार 1:46-48 पद में हम पढ़ते हैं, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। अब मरियम एक गीत गाती है और यह गीत मरियम के भजन के नाम से जाना जाता है। यह गीत हमें कई मजेदार बातों को सिखाता है। मरियम अपने गीत में हमें कहती है कि उसे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और वह उसमें आनंदित है। मेरे प्रोटेस्टेंट मित्रों, आइए हम उसे धन्य कहकर पुकारें। हम उसे देवी का स्थान देकर उसके सामने घुटने नहीं टेकते हैं, परंतु हमें उसको धन्य कहना चाहिए। यह उसके लिए एक महिमामय सौभाग्य था कि वह परमेश्वर के पुत्र की माता बनी, ताकि वह उसे इस संसार में लाए। हम उसे ऊंचा न उठाएं और न ही उसे नीचा दिखाएं। वह एक अद्भुत स्त्री थी और यह कोई दुर्घटना नहीं थी कि वह परमेश्वर के द्वारा चुनी गई हो। यह परमेश्वर का एक निश्चित निर्णय था और परमेश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं। आइए सुने मरियम के गीत जो वह आगे गाती है। लुका 1:49-55 में लिखा है, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को सिंहासन से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इसराइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो इब्राहिम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा था। वह गाती है कि उसने अपना भुजबल दिखाया। यशायाह नबी की पुस्तक 53:1 में भविष्यवक्ता ने कहा, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इसके पश्चात यशाया तुरंत इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, परमेश्वर ने अपने भुजबल को दिखाया है। और उसने अपनी सामर्थ और प्रेम को उद्धार में प्रकट किया जिसे उसने मनुष्य जाति को दिया। मरियम अपने गीत में अब्राहम को भी याद करती है या उसका नाम लेती है। पुराने नियम में अब्राहम से अधिक किसी और व्यक्ति का उद्धरण नहीं मिलता है। वास्तव में मानव स्तर में सबसे अधिक अब्राहम के बारे में ही बाइबल बताती है और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में अधिक चर्चा नहीं करती है। हम लूका के सुसमाचार 1 अध्याय उसके 56 पद में पढ़ते हैं, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। आइए अब देखें यूहन्ना का जन्म। प्रिय मित्र, इस अध्याय का शेष भाग यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म और जकरिया के गीत के विषय में बताता है। मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अधिक जोर दूंगा। तो आइए अब हम लूका के सुसमाचार 1 अध्याय उसके 57 से 60 पद को पढ़ें। तब एलिशिबा के जनने का समय पूरा हुआ और वह पुत्र जनी। उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने यह सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकर्याह रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। प्रिय मित्र, हम देखते हैं सबसे पहले लोगों ने बालक का नाम उसके पिता के नाम पर जकर्याह रखा, परंतु एलिशिबा जो सब बातों को बड़े ध्यान से देखती आ रही थी उसने कहा इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। हम लूका 1 अध्याय के 61 से 64 पद में आगे पढ़ते हैं, और उन्होंने उससे कहा तेरे कुटुंब में किसी का यह नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है, और उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है, और सबों ने अचंभा किया। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उन दिनों में साधारणतः एक नए जन्मे बालक को परिवार के सदस्यों का नाम दिया जाता था, और जब बालक के नाम को रखने का प्रश्न आया तो रिश्तेदारों ने सोचा होगा कि उसका नाम छोटा जकर्याह रखा जाएगा। यह मेरा विचार है अर्थात सोचना है, लेकिन एलिशिबा ने इसका सुधार किया, परंतु उन्होंने जकर्याह से निवेदन किया। और इसलिए कि जकर्याह बोल नहीं सकता था, उसने उनके लिए लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है। यह नाम पहले ही परमेश्वर के द्वारा दिया गया था, और इसलिए जो लोग वहां पर उपस्थित थे इस नाम के कारण चकित हुए। इसके पश्चात जकर्याह फिर से बोलने लगा और तुरंत परमेश्वर की महिमा के गीत गाने लगा। जबकि उसके अंदर इतना विश्वास नहीं था, फिर भी जब बालक उत्पन्न हुआ तो वह परमेश्वर में आनंदित हुआ। फिर से जकर्याह के द्वारा विश्वास की कमी का प्रदर्शन हुआ है, जो हम में से कई लोगों के जीवन में भी पाया जाता है। मेरे मित्र, जब परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है तब हम सचमुच में खड़े होते हैं और आनंद मनाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि परमेश्वर हम जैसे कमजोर विश्वासी लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए देते हैं ताकि हम आनंद मना सकें। जैसे कि एक नियम है कि कमजोर विश्वासी अधिक आनंद नहीं मनाते या उठा नहीं पाते हैं, परंतु जो विश्वास में मजबूत है वे हर एक परिस्थितियों में आनंद मनाते हैं। हम लूका के सुसमाचार 1 अध्याय उसके 65 पद से 69 पद में पढ़ते हैं, और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। और उसका पिता जकर्याह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा कि प्रभु इसराइल का परमेश्वर धन्य हो कि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला है। प्रिय मित्र, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यूहन्ना एक असाधारण बालक होने जा रहा था। यूहन्ना के जन्म पर जकर्याह जो लगभग 9 महीने से गूंगा था, वह न केवल बोलने लगा परंतु एकल गीत भी गाने लगा। पहला गीत एलिशिबा ने गाया, दूसरा गीत मरियम ने, और अब यह बिल्कुल सही है कि जकर्याह भी एक गीत गाता है। उसका गीत एक भविष्यवाणी है। यद्यपि जकर्याह दाऊद के वंश से नहीं है, परंतु वह इस बात को मानता है कि उसका बेटा यीशु मसीह के आगे आगे चलने वाला है, जैसा कि मलाकी और यशायाह नबी के द्वारा पहले ही कहा जा चुका था। यूहन्ना ही एक था जो मसीह के आगमन की घोषणा करने वाला था। आगे आगे चलने वाले की उपस्थिति यह संकेत देती है कि मसीह का आना अधिक दूरी पर नहीं है, वह जल्दी आ रहा है अर्थात आने वाला है। हम लूका 1 अध्याय उसके 70 से 75 पद में पढ़ते हैं, जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब वैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है, कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपने पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। प्रिय मित्र, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, परंतु इलिशिबा, मरियम और जकरिया अभी भी विश्वास कर रहे थे कि जो प्रतिज्ञा अब्राहम से की गई है वह अवश्य पूरी होगी। प्रिय मित्र, आज भी कुछ लोग हैं जिन्होंने यह मानना छोड़ दिया है कि परमेश्वर अब्राहम के साथ की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और वे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अच्छा करने जा रहे हैं, तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को जिसे उसने अब्राहम के साथ की है उस पर विश्वास न करें। हम लूका 1 अध्याय के 76 से 80 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इसराइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। प्रिय मित्र, यूहन्ना एक उच्चतम भविष्यवक्ता कहलाने वाला था। वह प्रभु के आगे आगे जाने वाला था ताकि उसके लिए मार्ग तैयार करे। यूहन्ना जानता था कि मसीह उनके मध्य में है। यूहन्ना बपतिस्मादाता एक बहुत ही असाधारण व्यक्ति था। उसे परमेश्वर के लिए एक विशेष कार्य को करने के लिए तैयार किया गया था। मित्र, यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 2 से बनाए रखेंगे और इस अध्याय में हम बैतलहम के गौशाले में यीशु का जन्म, यीशु का स्वागत, स्वर्गदूतों द्वारा उसके जन्म की घोषणा चरवाहों को करना, चरवाहों का गौशाले में यीशु को देखने के लिए जाना, मरियम का शुद्धिकरण और यीशु का खतना होना, मंदिर में शमौन के साथ की घटना, मंदिर में हन्ना के साथ की घटना, नासरत को लौटना, फिर से यीशु, मरियम और यीशु का यरूशलेम में जाना, जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तब, इन्हीं विषयों पर हम विचार करेंगे। प्रिय मित्र, यीशु जब 8 दिन का हुआ तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार खतने के लिए उसे मंदिर में लाया गया। हम गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। मित्र, इस तरह से इनके यरूशलेम जाने के परिणाम स्वरूप हमें शमौन और हन्ना के गीत मिलते हैं। डॉक्टर लूका यीशु के बचपन से संबंधित एक अलग घटना को हम सबको यह बताने के लिए लिखते हैं ताकि हम जाने कि यीशु का बचपन एक साधारण बच्चों की तरह था। हम लूका 2 के 52 पद में देखते हैं, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, अर्थात मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आत्मिक विकास में। मेरे प्रिय मित्र, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इसकी कुछ पृष्ठभूमि को देख लें। जैसे कि आपको मालूम है कि लूका रचित सुसमाचार ऐतिहासिक है और यह यूनानी और बुद्धिजीवी या सोच विचार करने वाले मनुष्यों के लिए लिखा गया है। इसका एक महान आत्मिक उद्देश्य भी है कि परमेश्वर के पुत्र को प्रस्तुत करें। परमेश्वर के एक महान दास नेअंदर ने इस प्रकार से कहा है, 3 महान ऐतिहासिक देशों को अपना योगदान देना था, प्रत्येक को एक विशिष्ट तरीके से योगदान देना था कि इस धरती पर मसीहत की स्थापना के लिए भूमि को तैयार करें, यहूदियों द्वारा धर्म के क्षेत्र में और यूनानियों द्वारा विज्ञान और कला के क्षेत्र में, और रोमियों ने जो संसार के स्वामी थे उन्होंने राजनीति क्षेत्र में योगदान दिया। मत्ती, मार्कुस और लुका प्रत्येक सुसमाचार मानवता के एक विशेष खंड को निर्देशित करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार यहूदियों के लिए लिखा गया, मार्कुस रोमियों के लिए लिखा गया और लूका रचित सुसमाचार यूनानियों को लिखा गया। डॉक्टर ग्रेगोरी ने अपने पुस्तक समाचार के केंद्र पेज संख्या 211 में लिखा है, यूनानी लोग स्पष्ट रूप से अन्य महान ऐतिहासिक लोगों की दौड़ से अपने निश्चित विशिष्टता के चिन्ह के द्वारा प्रतिष्ठित थे। वे प्राचीन संसार में कारण और मानवता के प्रतिनिधित्व थे। वे अपने को देखते थे जैसे कि उनका लक्ष्य एक परिपक्व व्यक्ति को बनाना था। उस समय वे विश्वव्यापी अर्थात विश्व नागरिक थे। उन्होंने अपने ईश्वर को मनुष्य की समानता में बना लिया, यहाँ तक कि अपनी समानता में, और इसी कारण से मानव संस्कृति से पूर्ण सांसारिकता और ईश्वर रहित से संयुक्त हुए। प्रिय मित्र, पौलुस ही एक सही व्यक्ति था जो अथेन में जाकर यूनानियों की आंखों को उनके अनजाने ईश्वर के लिए बनी वेदी के बारे में खोले। डॉक्टर लुका, जो एक अन्य जाति था, पौलुस के साथ गया। यूनानियों का लक्ष्य निश्चित रूप से यीशु मसीह के इस संसार में आने की तैयारी का एक भाग था, जिसने उस समय के विचारवंत लोगों को छुटकारे के लिए तथा मानव की परिपूर्णता के लिए उसकी अपर्याप्तता को समझने पर मजबूर किया। यद्यपि कि यह अच्छी तरह से प्रगति किया है, इसने इन्हें उन आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा और लालसा में छोड़ दिया जो इस कार्य को पूरा कर सके। यूनानी भाषा परमेश्वर के वचन को दूर तक पहुंचाने का माध्यम अर्थात साधन बना। यूनानी भाषा में ही संसार के लोगों को सुसमाचार सुनाया गया। इस कार्य को संभव बनाने के लिए परमेश्वर ने अलेक्जेंडर महान को उपयोग किया। अलेक्जेंडर महान के लिए इस प्रकार से लिखा गया है, उसने सभ्यता के जाल की डोरों को लिया जो एशिया तट पर बिखरे पड़े थे और उसने उन्हें सभी अन्य देशों में फैला दिया जो उसने अपने युद्ध के समय देखे थे। पूर्व और पश्चिम अचानक से एक साथ जुड़ गए। अलग हुए गोत्र अर्थात जाति भी एक जनसाधारण सरकार की अधीनता में एकजुट हो गए। राजनीति से संबंधित बातों के लिए केंद्र के रूप में शहर बनाए गए। संपर्क करने के नए साधन शुरू हुए और व्यापार कार्य के लिए मार्ग खुले। इस नई संस्कृति ने पिसिडिया और लिकाउनिया के पर्वतीय क्षेत्रों में अपना गहरा प्रभाव डाला। हिदेकेल और फरात यूनानियों की नदी हो गई। अथेन की भाषा बेबीलोनिया के यहूदी बस्तियों के मध्य में सुनी जाने लगी और ग्रीस के बाबुल का निर्माण मिस्र में विजय होने के द्वारा हुआ था जो उसके नाम से पुकारा गया। कोनी बियर एंड हाउसन लाइफ टाइम्स एंड ट्रैवल ऑफ सेंट पॉल वॉल्यूम 1 पेज नंबर 9 से ये सारी बातें ली गई है। उस शहर का नाम अलेक्जेंड्रिया था जो आज भी है। जब हम आगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में देखते हैं तो आप इस पृष्ठभूमि को अपने मस्तिष्क में अवश्य रखें अर्थात ध्यान में रखें ताकि हम सरलता से इसे समझ सकें। मैं विश्वास करता हूं कि यह पृष्ठभूमि इस अध्याय के अध्ययन में अवश्य ही मददगार सिद्ध होगी। प्रिय मित्र, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त हुआ है। प्रभु आपको इस अध्ययन के द्वारा और अधिक आत्मिक ज्ञान और आशीष प्रदान करे एवं वचन की संगति में बढ़ाए। प्रभु आप सबको अपनी आशीष दे। आमीन।
गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था, तेरे सन्मुख आने के लाया मैं कदापि योग्य न था। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।